بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. آپ نے جو تعارف فرمایا اس وقت واقعی ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور یہی سوچ ابھر ہے لوگوں کے اندر تبھی کوئی آغاز ہو سکتا ہے, اسی سوچ کی کمی ہے اس کی وجہ سے ہم یعنی آغاز لینے کی پوزیشن بھی نہیں ہو سکتی. اب تو میں ایک واقعہ عرض کروں جو ریلیونٹ نہیں ہے اس سے, لیکن اس سے مجھے ایک خاص بات جو نکال رہا ہوں میں, وہ اس کے اعتبار سے وہ بہت ہی ریلیونٹ ہے. ڈائریکٹ طور پر نہ ہو کبھی بھی, کوئی 20 برس پہلے دلی کے اخباروں میں ایک بڑی سنسنی خیز سرخی چھپی, اس کے الفاظ تھے انٹلیکچوئل ڈارفزم, یعنی ہندوستان کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ ذہنی بونے ہو جائیں. یہ سوامی ناتھن بہت مشہور سائنٹسٹ ہیں زراعت کے, انہوں نے ایک بیان دیا تھا تو وہ اخباروں میں آیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کو ذہنی بوناپن کا خطرہ ہے, انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا, اس لیے کہ ہندوستان کے لوگ پروٹین کھاتے نہیں ہیں, اور جو فارمیشن ہوتا ہے مائنڈ کا تقریباً 8 سال کے اندر, اس کے لیے پروٹین بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ پروٹین نہ کھائیں تو اس کا فارمیشن صحیح طور پر نہیں ہوتا, اور ذہنی اعتبار سے بین الاقوامی سطح پر آپ کچھ کمتر درجے کے انسان بن جائیں. اس کو انہوں نے کہا کہ انٹلیکچوئل ڈوارفزم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ جو انہوں نے بات کہی ایک اور اعتبار سے ہمارے اوپر صادق آتی ہے, یعنی ہم بھی کچھ اسی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم موجودہ دور میں کچھ ذہنی بونے ہو کر رہ گئے ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے, یعنی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا پروٹین اسٹارویشن, پروٹین فاقہ. میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل ذہنی فاقے کا معاملہ ہے مسلمانوں کا, ذہنی فاقے کا معاملہ ہے. یعنی حالات میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات میں کچھ مشکلیں پیش آتی ہیں, ان مشکلوں کو ہی اگر آپ بیان کریں, ان مشکلوں ہی کو اگر آپ جانیں, تو آپ نے کچھ بھی نہیں جانا, کیونکہ ان مشکلوں کے اندر ایک اور چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے, اس کو جاننے کا نام جاننا ہوتا ہے. اگر آپ نے مشکلوں کو جانا تو آپ نے کچھ بھی نہیں جانا. مشکلوں کے اندر جو دوسری بات چھپی ہوئی ہے اگر اس کو آپ دینے جانا تبھی آپ نے جانا. تو اسی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک قسم کے ذہنی فاقہ مبتلا ہیں کہ حالات میں جو چھپا ہوا ہے اس کو ہم دیکھ نہیں پاتے. میں ابھی یعنی ہمارے کچھ ساتھیوں نے مجھے بھوپال میں ادھر ادھر گھمایا اور اجتماع کے سلسلے میں جانا پڑا, تو ایک چیز نے بڑا اسٹرائک کیا مجھ کو بھوپال میں, وہ یہ کہ جس رخ پر بھی میں گیا سب سے اونچی بلڈنگ جو دکھائی دی بھوپال میں وہ تاج محل کی مینارے تھی. آپ خود بھی تجربہ کر لیجئے کہ بھوپال کے جس علاقے میں بھی آپ جائیں سب سے اونچی بلڈنگ جو دکھائی دی گیا وہ تاج محل کی مینارے ہیں. میں نے یہ سوچا یہی واقعہ کسی بھی مسلم ملک میں ممکن نہیں ہے, یقین کی کسی مسلم ملک میں, نہ پاکستان میں. پاکستان میں اگر ایک ایسا مندر بنایا جائے کراچی میں یا لاہور میں جو سب بلڈنگوں سے اوپر ہے, یقین کی وہ بن نہیں سکتا, اٹھا دیا جائے گا. ناممکن ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا مندر کھڑا کیا جائے جو ساری مسجدوں سے اور ساری بلڈنگوں سے اوپر ہو. سعودی عرب میں, لیبیا میں گیا ہوں, لیبیا میں ایک بہت اونچا وہ تھا, بہت اونچا ایک گرجا تھا, جس زمانے میں اٹلی نے قبضہ کیا تھا لیبیا پر تو بہت ہی شاندار گرجا بنایا تھا انہوں نے. اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے جا کر کے, اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے, اس کی اونچائی کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے. میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کسی بھی ملک میں, یہ مسلم ملک میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چرچ یا کوئی مندر اتنا اونچا بنایا جائے کہ ساری بلڈنگوں کو سے اوپر اٹھ جائے وہ اور پھر بھی وہ باقی رہے. کیا اس میں کوئی انڈیکیشن نہیں ہے؟ اس میں کوئی انڈیکیشن نہیں ہے؟ یعنی ہم کو کچھ باتیں پتہ ہیں, کچھ باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یعنی کچھ باتوں کا ہمیں پتہ ہے, کچھ تعصب ہو رہا ہے, امتیاز ہو رہا ہے, سروس نہیں دی گئی, یہ بات وہ بات, یہ تو پتہ ہے. اسی ملک میں ایک واقعہ یہ بھی اگر ہے کہ آپ نے ایک ایسی مسجد بنائی جس کے معیار تمام بلڈنگوں سے اونچے ہیں, اور مزید یہ کہ مسجد بنائی آپ نے آزادی کے بعد, اس سے پہلے جو مسجد تھی اس کے معیار اتنے اونچے نہیں تھے, اور پھر ملک برداشت کر رہا ہے. یہ ٹالریشن کی کتنی زبردست مثال ہے. یہاں سے کوئی اسٹارٹ نہیں ملتا آپ کو سوچنے کا. ایک واقعہ جو گزرا کہیں فساد کا مثلاً یا امتیاز کا مثلاً, سروس نہیں دی کسی کو, وہ تو آپ کو خود دکھائی دے رہا ہے. لیکن اسی ہی واقعات کے بیچ میں ایک اور واقعہ بھی چھپا ہوا ہے کہ آپ ایک ایسی مسجد بناتے ہیں جس کے بلندیاں جو ہیں سارے سپر سیٹ کر جاتی ہیں ساری بلڈنگوں کو, اور پھر ملک برداشت کرتا ہے, پھر ملک برداشت کرتا ہے. کیا اس میں کوئی بات نہیں ہے؟ بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے اس کے, کہ کوئی تو چیز ہے اس کی وجہ سے مسلم ملکوں میں یہ واقعہ ممکن نہیں ہوتا اور ہندوستان میں ممکن ہو جاتا ہے. کوئی تو چیز ہے, اسی چیز سے اسٹارٹ کیجیے, وہیں سے اسٹارٹ کیجیے. ایک شخص کا بہت ہی عمدہ قول ہے, بہت ہی عمدہ قول ہے, یعنی آدھی وزڈم اس کے اندر ہے, آدھی وزڈم. پالیٹکس از دا گیم آف پاسبلٹیز, پالیٹکس از دا گیم آف پاسبلٹیز, سیاست ممکنات کا کھیل ہے. یعنی اس میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ ناممکن چیزوں کے پیچھے دوڑنے کا نام پالیٹکس نہیں ہے. ناممکنات میں جو ممکن ہے وہاں سے اسٹارٹ لیجیے تو اس کا نام ہے پالیٹکس. ہمیشہ دیکھیے, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, کچھ چیز ممکن ہوتی ہے, کچھ چیز ناممکن ہوتی ہے, چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو, چاہے پیغمبری کیوں نہ موجود ہو, کچھ چیز ممکن ہوتی ہے, کچھ چیز ممکن نہیں ہوتی. میں آپ کو پیغمبر کی مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں بنا اس وقت کہ انصار خلیفہ بن جائیں. آپ اور فرمائیے, دو طبقے تھے مسلمانوں میں, ایک انصار کا تھا, ایک مہاجرین کا تھا. یعنی مکے کے لوگ مہاجر کہے جاتے تھے اور مدینہ کے لوگ انصار کہے جاتے تھے. دونوں مسلمان تھے, دونوں صحابی تھے, دونوں متقی تھے, دونوں مخلص تھے, لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ الائمۃ من قریش, خلیفہ جو ہے قریش میں سے ہوگا. آپ غور فرمائیے کہ یہ ممکن نہیں تھا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کہ انصار کو خلیفہ بنایا جائے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ حکومت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ روایات کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس کے اندر. ہندوستان میں آپ دیکھیے, ہندوستان میں مثال کے طور پر ایک ساؤتھ کا علاقہ ہے, ایک نارتھ کا علاقہ ہے. ساؤتھ کے علاقے میں ایک بہت ہی بڑا برین پیدا ہوا جس کا نام ہے راج گوپالاچاری. میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں گاندھی کے بعد سب سے بڑا برین جو ہے راج گوپالاچاری کا تھا, جواہر لال نہرو وغیرہ سب اس کے پیچھے. لیکن وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکا. کیوں؟ واحد ایڈوانٹیج اس کا یہ تھا کہ وہ ساؤتھ میں پیدا ہوا. وہ ڈس ایڈوانٹیج, اس کا ڈس ایڈوانٹیج صرف یہ تھا کہ وہ ساؤتھ میں پیدا ہوا, اور نہرو کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ نارتھ میں پیدا ہوا. کیونکہ ٹریڈیشنلی یعنی مختلف روایات جو ہیں اس کے نتیجے میں نارتھ کو لیڈرشپ حاصل رہی پالیٹکس کی, اور ساؤتھ کو لیڈرشپ حاصل نہ ہو سکی. یعنی مختلف جو صدیوں سے روایات رہی ہیں اس کی بنا پر, چونکہ ساؤتھ کو روایتی طور پر تاریخی اسباب کے اعتبار سے اس ملک کی لیڈرشپ حاصل نہ ہو سکی, اس لیے باوجود کہ سب سے بڑا برین تھا گاندھی کے بعد, وہ پرائم منسٹر نہیں ہو سکا وہ, اور نہرو پرائم منسٹر. یہی شکل وہاں تھی کہ عرب میں جو حالات تھے سینکڑوں برس سے, اس کے نتیجے میں قریش کو لیڈرشپ حاصل ہو گئی تھی روایتی طور پر. یعنی قریش کا آدمی ہو تو سب لوگ مان لیں کہ بھائی ہاں یہ خلیفہ ہونا چاہیے, نہیں تو پڑھائی حاصل ہی ہے. جسے آپ کے نوابی کے زمانے میں نواب صاحب کے بیٹے کو اگر بٹھا دیا جائے تو لوگ مانیں بھائی تو وہ نواب کا بیٹا ہے, اسے نوابی کرنی چاہیے اس کو. تو روایات کے زور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں, روایات کے زور. تو روایات کا زور اس زمانے میں جو تھا وہ تھا قریش کی لیڈرشپ کے حق میں, اور مدینہ کے حق میں نہیں تھا. مدینہ کی امیج کیا تھی, میں ایک واقعہ عرض کروں. مدینہ کی امیج یہ تھی کہ جو ابو جہل تھا, ابو جہل آپ جانتے ہیں ایک مشرک تھا, رسول اللہ کی مخالفت کی اور وہ بدر میں مارا گیا. تو بدر میں جب زخمی ہو کر گر پڑا ابو جہل, اور آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی زخمی ہوتا ہے تو پیاس لگتی ہے, تو ابو جہل کو پیاس لگی تو پانی مانگا اس نے, تو کسی نے پانی دیا. تو اس سے پوچھا اس نے کہ مجھ کو کس نے مارا ہے, तो उसने बताया अंसार के दो लड़कों ने मारा था उसको, अबू जहल को, यानी मदीने के जो लोग थे उनके दो लड़कों ने मारा था। तो अबू जहल की ज़ुबान से उस वक्त निकला जबकि वो मर रहा था, लव गैर अक्कारिन कतलनी, ये निकला ज़ुबान से, लव गैर अक्कारिन कतलनी। अक्कार कहते हैं जिससे आजकल के ज़बान में कहते हैं कि ये बनिया बक्काल जिसे उर्दू में बोलते हैं, यानी किसान वगैरह जो किसानी वगैरह करते हैं उसको अक्कार कहते हैं, यानी काश इन देहातियों के सिवा किसी और ने मुझे मारा होता, इन बनिया बक्काल के सिवा किसी और ने मुझे मारा होता आजकल की ज़ुबान में, ये उर्दू ज़ुबान के अतबार से लव गैर अक्कार इन कतलनी। ये इतनी घटिया इमेज थी अंसार की उस ज़माने में अरब के अंदर। आप बताइए उसको क्रैश अगर खलीफा बना दिया था उनको तो रिवोल्ट हो जाता, रिवोल्ट हो जाता। जैसे इंडिया में अगर आप एक हरिजन को प्राइम मिनिस्टर बना दे रिवोल्ट हो जाएगा। इंडिया के हालात ऐसे हैं कि जगजीवन राम को कबूल नहीं कर सकता इंडिया बतौर प्राइम मिनिस्टर के, कबूल नहीं कर सकता क्योंकि रवायात जो है ट्रेडिशन का जोर उसके हाथ में नहीं है। एक सब आता है। तो मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा था कि पैगंबर की मौजूदगी में भी बात जायज चीज़ें नामुमकिन होती, ये कहना चाहता हूँ। पैगंबर की मौजूदगी में, साहब इकराम की मौजूदगी में बात जायज चीज़ें नामुमकिन होती हैं। ज़ाहिर है कि इसमें कोई नाजायज का पहलू नहीं था कि अंसार को खलीफा बनाया जाए, लेकिन अमली एतबार से नामुमकिन था। उस वक्त आपको तस्लीम करना पड़ता है अगरचे वो नाजायज़ ना हो, तस्लीम करता कि मुमकिन नहीं है। इसको कहा गया कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अगर आप नामुमकिन चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे। नामुमकिन में मुमकिन का जो हिस्सा है, जो मकाम है, वहाँ से दौड़िए, वहाँ से अपना आगाज़ कीजिए, वहाँ से स्टार्ट लीजिए। तो मैंने मिसाल दी कि इसी भोपाल में आप देखते हैं कि सबसे ऊँची बिल्डिंग मस्जिद की है, क्या यहाँ से स्टार्ट लेने के लिए कुछ नहीं है आपके लिए? इस माने कि इस मुल्क में टॉलरेंस है जो टॉलरेंस किसी भी मुस्लिम मुल्क में नहीं। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ कि क्या वजह है कि इस टॉलरेंस के बावजूद फसाद होता है। इसकी एक ही सबब है, वो ये कि हम सोई हुई अना को जगा देते हैं। वह सबब का ये, कोई दूसरा सबब नहीं। देखिए हर इंसान, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो, हर आदमी के एक अंदर एक अना है, यानी ज़्यादा किल लफ्ज़ों में एक शैतान है। हर आदमी के अंदर एक शैतान सोया हुआ है। आपकी कामयाबी यह है कि उसको सोया रहने दें आप। अगर आपने उसको जगाया तो फिर वो पस्त कर जाएगा, फिर वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है। ये वजह है कि आप जानते हैं कि बेटा बाप के खिलाफ बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। एक घर में दो बहुएं आती हैं, वो दोनों भाइयों को लड़वा देती हैं। ये निपेशुमार वाक़ात कि मुसलमानों के अंदर लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, इसलिए कि वो मुसलमान, एक मुसलमान अपने भाई को शैतान को जगा देता है किसी हिमाकत की वजह से। अगर उस शैतान को आप सोया रहने दें आप सब कुछ कर सकते हैं, और जगा दें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो मुसलमानों का मामला, सबसे बड़ा मामला यह है कि मुसलमानों में तहम्मुल नहीं है। सबसे बड़ा मामला है बर्दाश्त का मामला मुसलमानों में। जरा से कोई बात हो, यानी मस्जिद के सामने जुलूस निकल जाए, किसी मंदिर में घंटा बज जाए, बस मुसलमान जो है बस्त हो जाता है। जब बस्त हो जाता है, बस्त होकर के वो रोकता है, लड़ता है, तो वही बस्त होंगे फिर उसके बाद। तो अगर आप उनके शैतान को सोया रहने दें तो मैं मुझे पूरे यकीन के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान में एक भी फसाद ना हो, एक भी फसाद ना हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इसी पॉलिसी की वजह से अलरसाला ने बहुत से मकाम और फसाद को रोका है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जलगांव, जलगांव जो बम्बई के पास है, वहाँ हर साल हिंदुओं का जुलूस निकलता था और हर जुलूस के मौके पर फसाद भी होता था, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता था। तो एक मस्जिद पड़ती थी दरमियान में जुलूस के, उसी मस्जिद के पास वो आकर के रुकते थे देर तक, और रुक करके कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती थी कि मुसलमान कुछ पत्थर फेंकते थे, कुछ करते थे, और फिर वो बस्त होकर के लड़ाई शुरू होती थी। वहाँ किस्सा ये हुआ कि लोग रसाला पढ़ने लगे तो उनके अंदर ये मिजाज पैदा हुआ कि हम इसको भी तजर्बा करें जो रसाला वाले बताते हैं करने के। चुनाचा पिछले साल से पहले साल का किस्सा है, दो साल पहले का, कि गर्मियों में निकलता था वो जुलूस। उन्होंने कहा कि इस साल हम इन्हें रोकेंगे नहीं, मुसलमान रोकते थे किधर से जाओ उधर से जाओ करते थे, तो उनका इस साल हम रोकेंगे नहीं। बल्कि उन्होंने ये किया कि गर्मी के मौसम में उन्होंने रास्ते में यहाँ से वहाँ तक मस्जिद के पास जो सड़क थी पानी का इंतजाम कर दिया, यहाँ से पानी का इंतजाम कर दिया, यानी बजाय रोकने के इस्तकबाल किया गया उनका। तो जलगांव के एक साहब आए थे, उन्होंने बताया कि जिस जुलूस को वहाँ से गुजरने में 4 घंटे लग जाते थे, वहाँ से वो सिर्फ 8 घंटे में गुजर गया, 8 घंटे गुजर गया। क्यों? आपने रोका नहीं, आपने उनके शैतान को छिड़ा नहीं, वो चले गए, कोई फसाद भी नहीं हुआ। सारे फसाद की जड़ ये है कि मुसलमानों ने सब्र खो दिया है। असल चीज़ ये है, उन्होंने सब्र खो दिया है, सब्र खो दिया, इसीलिए वो हर चीज़ को खोए हुए हैं। या कुरान मजीद में और हदीस में इतना ज्यादा इस पर जोर दिया गया है सब्र पर कि एक मरतबा मैंने शुमार किया, हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप बातें करते हैं इसकी और कुरान में तो जिहाद की आयतें हैं, कताल की आयतें हैं, तो मैंने एक रोज गिना बाकायदा गिना, तो मालूम यह हुआ कि कुरान मजीद में जिहाद और कताल की आयतें 50 हैं और सब्र की आयतें 200, और तमाम आयतें कताल की डिफेंस के लिए हैं। कुरान में एक आयत आप नहीं बता सकते जहां कताल की आयत डिफेंस के बगैर आई हो, हर जगह डिफेंस के लिए, कहीं भी एग्रेशन के लिए नहीं है, और तब भी 50 है वो, और सब्र की आयतें 200। और हदीस में आता है कि एलम मन्न नसर महासब्र, जान लो कि अल्लाह की नुसरत सब्र के साथ आती है, पेशेंस के साथ आती है, अपने को थामने के साथ आती है, बर्दाश्त करने के साथ आती है। तो ये है असल चीज़ मैं समझता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग जहनी फाका मुब्तला हैं कि दो इम्कानात में से सिर्फ एक इम्कान को हम देख पाते हैं, एक इम्कान दो इम्कानात में से एक इम्कान को देख पाते हैं। मैं इसी से एक और मिसाल अर्ज करूँ कि अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया कि कुरान को बैन किया जाए, और 1 to 1 सारे मुसलमानों ने उसको कंडम किया, सारे कंडम किया, यानी इसके खिलाफ बोलने वाले सारे थे, लेकिन इसी वाक़े में एक जो पॉजिटिव पहलू था वो किसी को दिखाई नहीं दिया। मेरे इल्म में कोई एक न तो जुबान है न कोई कलम है जिसने उस पॉजिटिव पहलू को क्लियर किया। वो क्या था? देखिए, एक बहुत ही मैं यानी जिसको हिंदी में कहते हैं तथ्य की बात, एक गहरी बात यह है कि हमेशा बातों दो बातों के मिलाने से सही बात का पता चलता है। एक तरफ आप ये देखें कि भोपाल में फलां आदमी के साथ इम्तियाज बढ़ता गया, दूसरी तरफ ये देखें कि उसी भोपाल में सबसे ऊंची मस्जिद खड़ी हुई है, दोनों के मिलाएंगे तब सही रिजल्ट पाएंगे आप। अगर आप एक बात को देखेंगे सही रिजल्ट नहीं पा सकते आप, हमेशा दो बातों को मिलाना पड़ता है तब सही रिजल्ट मिलता है आदमी, ये दुनिया का फायदा है। आप ये देखिए कि कुरान मजीद पर बैन लगाने की कोशिश की गई मक्का में, आजकल की जुबान में नहीं बोली जाती थी उस जमाने में, लेकिन वो बैन ही तो लगाना था कि कुरान को तुम नहीं सुना सकते यहाँ, अगर कुरान को सुनाना तुम्हें तो मक्का छोड़ देना पड़ेगा, ये तो मुतालबा था उनका, कुरान को बंद करो। आपको मालूम है कि ये उनका जो मुतालबा था पूरा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान को लेकर के मक्का को छोड़ देना पड़ा। जी, ये वाकया हुआ कि नहीं हुआ? कि मक्का के लोग जिनके पास इख्तदार था उन्होंने मुतालबा किया कि आप कुरान को बंद करें तब ना रह सकते हैं, और अगर कुरान को सुनाना है आपको तो आप मक्का छोड़ दीजिए। ये बात यहाँ तक पहुँची कि 13 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान समेत मक्का छोड़ देना पड़ा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि उन्होंने बैन लगाना चाहा और बैन लग गया, बैन लगाना चाहा और बैन लग गया। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ यह हुआ कि बैन लगाना चाहो बैन नहीं लगा, यानी बैन लगाना चाहा और बैन नहीं लगा, दोनों को मिला ये दोनों वाक़े को। यानी एक शख्स ने मुकदमा दायर किया, उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली से ला मिनिस्टर यहाँ से चल करके वहाँ गया, फौरन उड़ करके वहाँ पहुँचा कलकत्ता, हुकूमत के वकला जो होते हैं वो पहुँचे वहाँ, और ख़ुद वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया कलकत्ते का जो चीफ मिनिस्टर है, वगैरह वगैरह जो सारी बातें हुई। नतीजा क्या हुआ कि यानी मुकदमा आमतौर पर बहुत देर में फैसले होते हैं, लेकिन इस मुकदमे का फैसला इतनी जल्दी हुआ कि उसको डिसमिस कर दिया उसने। जो खातून जो जिन्होंने उसमें एडमिट किया था वो खुद यानी इतना घबराई कि उन्होंने दूसरे को केस दे दिया, दूसरे जज को, और उसने फिल फॉर उसका फैसला दे दिया, दो किस्तों में, पहली बार तो फिल फॉर फैसला दे दिया, उसके बाद डिटेल फैसला बाद को दिया, इतनी जल्दी उसको निपटा कर उसको डिस्कस डिसमिस कर दिया उसने। आप गौर फरमाइए कि मक्के में बैन लगाना चाहा और बैन लग गया, और कलकत्ते में बैन लगाना चाहा बैन नहीं लगा, ये दोनों को मिला करके देखिए, इसके माने ये क्या है कि मक्के से ज़्यादा बेहतर पोजिशन में आप इस वक्त यहाँ हैं, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, इन दोनों को मिला करके रिजल्ट ये निकलेगा कि मक्के में जो हालात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हालात हैं आपके लिए इंडिया में काम करने के। क्योंकि हम एक वाक़ देखते हैं सिर्फ, यानी हमने कलकत्ता देखा और मक्का नहीं देखा, नतीजा क्या हुआ कि हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल सके इसका। हमने, हमको कलकत्ता नज़र आया और हमको मक्का नज़र नहीं आया, तो क्या हुआ कि हम खाली एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, खाली वन टू ऑल सारे लोग एंगेज किस चीज़ में हैं, उसको कंडम करने में, कंडम करने बस। और उसमें जो दूसरा पहलू छुपा हुआ है, यानी कांटे के अंदर जो शह छुपा हुआ है, कांटे के अंदर जो महक छुपी हुई है, वो महक नहीं सुनाई, महक नहीं मिलती आपको। यानी अल्लाह ताला ने जो फूल पैदा किया है वहाँ कांटा है, कांटे के साथ महक भी है, कांटे के साथ शहद भी है, कांटे के साथ रस भी है, कांटे के साथ लताफत भी है। जो आदमी कांटे मुलझेगा लताफत को नहीं पाएगा। तो आपको दो चीज़ें देखनी पड़ती है कि कांटा है तो शहद भी है, कांटा है तो महक भी है। यही देखना पड़ता है कि अगर यहाँ फलां चीज़ है तो फलां चीज़ भी है। तो जब दो वाक़े को मिलाकर देखा जाता है तभी सही रिजल्ट सामने आता है। ये साइंटिफिक तरीका है, ये साइंटिफिक तरीका है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये शिकायत है कि कलकत्ते में कुरान के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, तो ये कोई नज़र नहीं आता कि वहाँ डिसमिस भी किया गया, वो इसको भी देखिए, जबकि मक्के में डिसमिस ना हो सका। तो गोया के दूसरे लफ्ज़ों में बात यह हुई कि मक्के के मुसलमान जहाँ से स्टार्ट लेने के पोजीशन में थे, उससे ज़्यादा बेहतर मकाम से आप स्टार्ट लेने के पोजीशन में हैं इंडिया, फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं, फिर भी शिकायत कर रहे हैं, कैसा, यानी अगर सोचिए तो कैसी अजीब बात है। मक्के से स्टार्ट लेकर उन्होंने दुनिया की तारीख बदल दी, दुनिया की तारीख बदल दी। यानी अमरीका से छपी है इंसाइक्लोपीडिया, मैं अक्सर इसका हवाला देता हूँ, उसमें उसके अल्फाज यही हैं इस्लाम के बारे में, इट्स एडवेंट चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इस्लाम के जोर ने दुनिया की तारीख को बदल दिया, इट्स एडवेंट चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो कहाँ से शुरू हुआ था इस्लाम, मक्का से, और मक्का की हालत क्या थी, उससे बेहतर बुरी हालत थी जो कि इंडिया में। आप बताइए कि मक्के से स्टार्ट लेकर के उन्होंने क्या किया कि दुनिया की तारीख को बदल दिया, और ज़्यादा बेहतर मकाम पर स्टार्ट लेने की कोशिश में इंडिया में है आप, और सवाल शिकायत का आप कुछ नहीं मिलता, क्या प्रोटेस्ट कुछ हाथ में आता है, क्यों, इसलिए कि फूल के साथ जो कांटा लगा रखा है कुदरत ने, तो कांटा दिखाई दे रहा है, फूल नहीं दिखाई दे रहा है, दो चीज़ों में से एक चीज़ दिखाई दे रही है, दूसरी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। बहुत जब मैंने मीनारों के यहाँ देखा, मैं तो एक अजीब एक जोश पैदा हुआ कि इंडिया में कितना मौका है काम करने का, क्योंकि किसी मुस्लिम मुल्क नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा लीबिया में कि बड़ा ही ज़बरदस्त गिरजा था वो, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सके मुसलमान, कितना बड़ा गिरजा हमारे त्राबुलिस में खड़ा रहेगा, इतना बड़ा गिरजा जो हमारे, यानी हर सिटी में है वो खड़ा रहेगा हमारे शहर में, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में, अब बात मस्जिद वहाँ नमाज होती है, मैंने खुद उन्हें जुमे की नमाज पढ़ी है वहाँ। ये वाक़ पाकिस्तान में जिस भी मुस्लिम मुल्क में आप चाहें तजुर्बा कर लीजिए कि अगर वहाँ सारी बिल्डिंगों से ऊँचा एक चर्च बनाया जाए, ऊँचा एक मंदिर बनाया जाए, वो उठा दिया जाए, कभी रह नहीं सकता। तो इसको गौर कीजिए, इसको गौर कीजिए, शिकायतों से कुछ नहीं होता, शिकायत करने वाले लोग दुनिया में कभी तारीख नहीं बनाते, कभी तारीख नहीं बनाते। आज ही मैं एक गुफ्तगू में कह रहा था ये कि कुरान मजीद में है कि इन मगल उसर युसरा, इन मगल उसर युसरा, बिला शुबा मुश्किल के साथ आसानी है। ये फिक्रा दो बार सूरह आलम नशर में आया है, मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है, यानी कांटा है तो फूल भी है, अगर डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी छुपा हुआ है उसी के अंदर। इसका मतलब ये है कि तुमको अगर कोई डिसएडवांटेज पेश आए तो जान लो कि खुदा ने जो निज़ाम बनाया है उस निज़ाम के तहत लाजिम है कि वहाँ एक एडवांटेज भी छुपा हुआ होगा, उस एडवांटेज को तलाश करो और उसके बाद कामयाबी यकीनी हो तुम्हारे लिए। ان مال اسری اسرا کے، اگر میں لفظ بدل کر کہوں تو اس کے معنی یہی ہوں گے کہ ہر ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج چھپا ہوا ہوتا ہے، ہر ناموافق صورتحال میں ایک موافق صورتحال چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہر ناممکن میں ممکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو کوئی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے سچ کیے تو ہمارے بھائی صاحب میں وضاحت کی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے یہ کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہاں اس طرح کے ذہن ہے لوگوں کے اندر، یہ تو یعنی میرا خواب ہے جو پورا ہو رہا ہے، یہی سوچ جو میں چاہتا تھا وہ یہاں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے برکت دے، اسی ڈھنگ پر قوم کو ہم چلا سکیں، اور اسی ڈھنگ پر ہم اپنی زندگی کی تشکیل کر سکیں، اسی ڈھنگ پر ہم اپنی منصوبہ بندی کر سکیں، اثر نو اس کے بعد کامیابی یقین ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔